देना, विष्णु चतुर्दशी रामनवमी में इन सब का व्रत सब लोग करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि विधवाओं को नहीं करना चाहिए, गलत बात। लड़की भी करेगी, लड़का भी करेगा, सभा भी करेगी, विधवा सभा तो नहीं करना चाहिए कहते हैं, किंतु ये गलत बात। एकादशी को ये उद्यापन मत कराना, कोई घर में आई हुई लक्ष्मी को विदा मत करना, कभी नहीं उद्यापन करना। उद्यापन करने से कुछ अपराध होता है। स्मार्ट ब्राह्मण लोग अपने पेट पालन के लिए ऐसा कराते हैं। हमारे घर में लक्ष्मी जी भगवान की पत्नी आई हैं और उनको हम विदा करने, अब जाओ अब हम उससे नहीं होता है तुम्हारी सेवा, तो अपने वृद्ध माता पिता को भी ऐसे आजकल हो रहा है ऐसे, इसलिए उद्यापन इत्यादि मत करना। हमारे पास में बहुत लोग, हम नहीं जाते। इसलिए प्रहलाद महाराज जी का ऐसा हुआ, बचपन से महाभाव वक्त हुए और उनको सुदेव मिला नारद जी जैसे गुरु मिलने का। सुखदेव गोस्वामी माता के गर्भ में 12 या 16 वर्ष तक थे और उस समय में 16 वर्ष तक उन्होंने व्यास की हरि कथाओं को श्रवण किया और सब देखोगे कैसे बने। और उनको 7000 वर्ष का समय मिला था माता के गर्भ में थे, एक दो वर्ष नहीं, 7000 वर्ष। और उन्होंने नारद जी से, नारद जी के आश्रम में उनकी मैया रही और नारद जी के कुटी की सेवा करने से लिप पोत देना और वहां पर सेवा करना, फूल इत्यादि ला देना। नारद जी बोले जिसे तुम वर मांगो, कभी हमारा बेटा भी नहीं हो, हमारा पति गया है तपस्या करने के लिए, वो जब तक नहीं लौटा था तब तक इसका जन्म नहीं हो, ये तो देवता लोग इसे मार डालेंगे। उन्होंने कहा ठीक है ऐसा ही होगा, जब तुम चाहेगी तभी तुम्हारा पुत्र हुआ है, नहीं होगा। बस 7000 वर्ष तक नारद जी के विभिन्न तत्व तक हुए, इसलिए जन्म के साथ ही साथ में महाभागवत हुए। महाभागवत का लक्षण है जितना भी क्लेश विपत्ति आए उसके लिए दूसरों को दोष नहीं देता। देखो ना, हिरण्यकश्यप को पीस दिया, आग में जलाया, मारा काटा, जो नहीं करना चाहिए सब कुछ किया, किंतु उन्होंने कभी नहीं कहा कि पिताजी हमारे प्रति में तन दोष हो, ऐसा क्यों करे, कहा कभी नहीं कहा। उनको मस्तक ऐसा प्रकृति उसे दे दिया। भगवत भक्त ऐसे ही होते हैं, कभी किसी से उड़ाने नहीं देते कि उसने हमारी सास ने ऐसा किया है, और सास भी ऐसा उड़ाना नहीं देगी कि उसने हमारे बहू ने ऐसा किया। लड़का दोष पिता को नहीं देगा, पिता उसको दोष नहीं देगा, किसी को कोई दोष नहीं देगा। अपने कर्मों का फल या भगवान की इच्छा मान करके उसे भोग लेगा, उसके प्रति शत्रुता नहीं होनी चाहिए, नहीं तो चित्त चंचल होने से भगवान का नहीं भजन। इसलिए प्रहलाद महाराज जी का यदि भजन करना है तो प्रहलाद जी का अनुसरण करो। प्रहलाद जी ने जैसे भजन किया वैसे भजन करो, सर्वत्र ही भगवान को दर्शन करते, ऐसा कोई भी प्राणी नहीं, मनुष्य नहीं, पेड़ पौधे नहीं, अपने आराध्य देव को सब समय सर्वत्र देखते थे और उस प्रभु में समस्त प्राणियों को देखते थे, ये प्रभु के सेवक हैं। हम लोग भी ऐसा ही देखेंगे, ये सब प्रभु के सेवक हैं, देविता है। एक प्रकार से जो देखेगा वो भजन कर सकेगा और प्रहलाद महाराज जी जैसा हो सकेगा। इसके बाद में उसके पिताजी ने उससे बहुत शत्रुता की, किंतु उन्होंने उसकी परवाह नहीं की। पिताजी ने कहा तुमने क्या अच्छा समझा, निर्धारक होकर के निर्दय होकर के बदला है, प्रभु का भजन करना ही सर्वोत्तम पाठ है, इससे बढ़कर के और कोई नई शिक्षा नहीं जानता, एकदम गलत। फिर तुम उनको मारना चाहा किंतु मार नहीं सका। अरे तुम्हारी कौन रक्षा करने वाला है, कौन रक्षा करता है, तो प्रभु हमारी रक्षा कहां है, तो सर्वत्र।
सामने है, खड़क खत्म शब्द है, तो मैं क्यों नहीं देखता तू? मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं, संडामर्थ तुम्हारे गुरु नहीं है, तुम्हारा गुरु कौन है, कौन तुमको सिखाया है? तू तो जानते हैं कि हमारे गुरु नारद जी, उन्होंने सिखाया। अभी हमारे गुरु से संडामर्थ से तुम अधिक समझ गया, उनकी बात और मेरी बात नहीं मानता है। बहुत तरह से निरंतर लगा, कहा है तुम्हारा प्रभु देखे तो तलवार लेकर के दौड़ा और गदा लेकर के मारा, पर तुमको मारता और जब दौड़ा तो ही मैं धक निशुल्क की प्रगत की और किस प्रकार से उन्होंने रक्षा की और किस प्रकार से उसको आप लोग को दिन में नहीं मरेगा, रात में नहीं मरेगा, किसी पशु पक्षी प्राणी मनुष्य कीट गंधर्व देवता से नहीं मरेगा, ब्रह्मा के सृष्टि की है प्राणियों से नहीं मरेगा, दिन में नहीं मरेगा, रात में नहीं मरेगा, ऊपर नहीं मरेगा, नीचे नहीं मरेगा, घर के भीतर नहीं मरेगा, बाहर नहीं मरेगा, और किसी वर्ष में नहीं मरेगा, अब इससे अधिक क्या वर्ष में मरेगा, मैं 12 महीने में नहीं मरेगा, वास्तव सत्य से नहीं मरेगा, सब प्रकार के परमाणु प्रभु ने अच्छा तुम्हारी पीढ़ी तक बुद्धि है, तो दिन में रात में नहीं शाम, ऊपर नहीं नीचे नहीं जन्म पकड़, घर के भीतर नहीं बाहर नहीं, मन में 12 महीने से अतिरिक्त जो मलमास लगता है पुरुषोत्तम महीना भी जो ऐसा पुरुषोत्तम महीने के अंदर इसी तरह से उसकी मन ही बातों को भी रक्षा हो गई और एक सेकंड में नहीं लगा उसको मारते फिर बालकों को कैसे शिक्षा दी और सबको बना दिया भगवत भागवत का पाठ का यही तात्पर्य है। हम लोग दक्षिणा नहीं चाहते, रुक्मिणी का विवाह कर करके और आप लोगों से ये नहीं कहेंगे जैसे आप लोग उपहार रहे, हम लोगों को कोई चीज की जरूरत नहीं, हम आपको जो उपहार देंगे उसको ग्रहण करेंगे, आप लोग का करेंगे जन्म, कल उनका जन्म होगा, कृष्ण का जन्म होगा, नंद बाबा भी रहे जसोदा जी, उसके लिए मैं आपसे नहीं कहेंगे ये लिए सब लाइए, वो सबको हमको जोड़ तब हम आप लोग करेंगे, तो हम लोग कुछ भी अपेक्षा नहीं रखते, हम यही चाहते हैं प्रहलाद महाराज ने असुर बालकों को जो दिया और असुर बालकों ने उसे ग्रहण किया और भगवत भजन आरंभ कर दिया, हम इसी के लिए हम लोग आए। यदि आप लोगों में से लोगों ने ग्रहण किया तो हम समझेंगे कि हमारी बहुत कुछ दक्षिणा नहीं और ये जगह नहीं होगा तो दक्षिणा से हम लोग संतुष्ट हमें उन सबकी जरूरत, जैसे सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज ने दक्षिणा देकर के विदा किया कि नहीं दिया, क्या दक्षिणा उनको दिया, राज्यपाल दे दिए ना क्या, सोने की चीजें अलंकार इत्यादि भागवत दान किया दिया, उनको पता ही नहीं है, उनको उपदेश देकर के कहा जैसे रहो भगवान में चित्त को लगाओ, सब तक आकर कभी स्पर्श नहीं कर सकेगा, तुम्हारी मृत्यु होगी नहीं, ऐसा और वे भी खोकर के बैठ गए, अपनी मैया को सुनाने लगे हरिकथा, मैया ने पूछा ये तुमने जो सुना, मैं स्त्री थोड़ी सी बुद्धि मैं समझ नहीं सकी, सुखदेव गोस्वामी ने क्या क्या ये सब कहा, तुम आप इसी समय में हमको कुछ कहो, अब थोड़ा सा समय था उसी में उन्होंने श्रीमद भागवत का सार, गोपियों का प्रेम, भजन का पातम में ये कैसे कैसे भजन होता है ये सब चीजों को सुना करके एक सेकंड के अंदर में माता जी को भी कृष्ण के प्रिया के रूप में बदल दिया, ऐसा भजन ये भागवत का तो प्रहलाद महाराज ने ऐसी सुंदर कथित कथा उनको सुनाई, जितने असुर बालक लोग थे पर सब लोग ये भागवत पाठ का पाठ कर, इसलिए आप लोग भी इनके चरित्र को श्रवण करेंगे और खुद हृदय से इसे ग्रहण करके आज से ही भगवत भजन जो जो कर रहे हैं पहले से तो ठीक है, और नहीं तो आज से ही साधारण लोग कहते हैं आज करो तो कल करो तो परसों, क्या खटखट में पड़े हुए हो,
समय पड़ा है बरसों, अरे आज से नहीं कर उसे लड़कों की शादी कर लें, इसके बाद में और कर लें, नाती आ जाएगा वो भी बड़ा हो जाए उसको भी खिला दें, इसके बाद में नाती के लिए शादी कर लें, इसके बाद में जब वृद्ध हो जाएंगे चल फिर नैसे ने उस समय भजन कर। और भक्त लोग आते हैं काल पाओ तो आज कर, आज करो तो अब पल में पल लय होगी बहुत करो, कब से करेगा। इसलिए भागवत श्रवण करके सभी लोग भजन करना आरंभ, सबके हाथ में माला देखना चाहते। यहां तो हम लोग नौ दिन भागवत कर इसमें प्रारंभ दे कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर भागवत का सार वेद ही होता है। सवेरे बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं होती हैं जो जगत में कहीं नहीं मिलेंगी। इसलिए आप लोग ये पाठ होने के बाद ही नौ बजे के बाद भी शाम को 6 बजे से 7 बजे अभी हो रहा है सवेरे उसमें कथाएं आएंगी। इससे भी बड़ी बड़ी सुंदर इसमें तो हम लोग बाइंडिंग में है, जो ये करना है हमको ये कहना है उसमें मैं किंतु बाइंडिंग में रहेगी भगवान की अत्यंत सुंदर रश्मि कथाओं का परिवेश हम उसमें जीवन सार्थक। इसलिए हम लोगों को प्रहलाद महाराज जी से शिक्षा लेनी चाहिए। हमारे गुरु जी थे गुरु जी थे, उन्होंने 108 बार 1008 बार श्रीमद् भागवत की ये प्रहलाद महाराज जी का उपाख्यान पाठ किया। और कहते थे यदि प्रहलाद महाराज जी का अगर स्कूल नहीं मिला तो भजन नहीं कर। ये ब्रह्मचारी उन लोगों से विशेष करते हुए और विभजन करने वाले यहां पर अशानुपचित मत है, चित्त को चंचल न करें, एकांतिक चित्त से भगवान का भजन करते हुए भगवान को चैतन्य महाप्रभु के आपस कौन सा पाए। परस्पर किसी भी बात के लिए विरोध न हो, वो जो करता जैसे ये हमको क्या करता है ठीक, जो जो हमारे यहां सुनने आता है वो लोग भी यदि कामना होगी तो क्रोध होगा, क्रोध होगा लड़ाई होगी, इस सबको तो हटा देना है एकदम, कहने से नहीं हो जाएगा। किंतु हम ऐसा करते हैं गुरु जी का आदेश, हमको लड़ना है भागवत का आदेश, तो ये सब जीवन चरित्र बनेंगे और भजन में मन लगेगा। इसीलिए हमारा मन नहीं लगता क्योंकि इसी में हम लड़ जाते। अब हम लोग सुबह भागवत प्रारंभ करेंगे, बड़े ध्यान से आप लोग श्रवण करेंगे, विशेष करके ये उपाख्यान भागवत का ये लक्षण है जिसमें प्रहलाद महाराज जी का चरित्र वर्णन किया गया है। और पीछे वाला चित्रकूट का भी वो भी साधारण नहीं है, कुछ भी साधारण है, सभी असाधारण तत्व है। इसलिए इसको ग्रहण करने की लालसा से आप लोग सब बंता श्रीमदभागवत से प्रहलाद महाराज जी का उपाख्यान सुना। हमने सवेरे आरंभ में हमने कुछ बतलाया प्रहलाद महाराज जी के शिक्षाओं का ध्यान हम देखते हैं। जीवों के लिए प्रधान और एकमात्र कर्तव्य भगवान का भजन करना है, इसीलिए हम लोग जगत में आए। किंतु हमने अपने बहुत से कर्तव्य ऐसे बना दिए हैं कि भगवान का भजन करना ये कर्तव्य ही कुछ नहीं रह सकता। अभी मैंने किसी व्यक्ति से सुना कि बिहार के कोई प्रधान मुख्यमंत्री लालू प्रसाद, उन्होंने कहा भाई ये भक्त लोग और ब्राह्मण लोग हैं कुछ कान में जने चढ़ाते हैं, भाई बिना कान में क्या है, वो लोग कान में जनेऊ चढ़ा करके पेशाब करते हैं और हम लोग तो नहीं करते हैं, कान पर नहीं चाहे तो हमको भी पेशाब हो जाता है। तो ये जनेऊ चढ़ाने की क्या जरूरत है, भगवान का भजन करने का क्या जरूरत है। बहुत से लोग हैं, कुछ लोग थोड़े लोग भगवान का भजन करते हैं और अधिकांश लोग 99% भगवान का भजन नहीं करता है, तो उनको भजन नहीं मिलता है। वो लोग जीवन दान करते हैं तो भगवान का भजन करने की क्या जरूरत है। राज महाराज ने इस शब्द का उत्तर दिया है, कहीं तो पेशाब तो घोड़े और गधे और सुअर भी करते हैं, तो तुमने पेशाब बिना कान के ऊपर में चढ़ाए हुए कब्जा के लिए कौन सी बड़ी भारी बात कर, गधे और सुअर नहीं करते, ऐसा कोई प्राणी है जो नहीं करता है, तो तुम इसीलिए पैदा हुआ गधे और भोग का काम करने के। ब्राह्मण वह है, भक्त वो है जो ये जानते हैं कि ये शरीर मैं नहीं हूं, मैं अक्षर हूं, अनादि हूं, नित्य हूं, अजर हूं, अमर हूं। आजकल ऐसी कोई शिक्षा ही नहीं है संसार में, न गवर्नमेंट इस शिक्षाओं की जरूरत समझती है और न साधारण आदमी, इसलिए आज ये दुर्दशा है। आज यदि हम लोग वैदिक रीति के अनुसार में चलने लगे और रामायण जी की शिक्षाओं को अनुसरण करें तो हम समझेंगे कि हम अजर अमर आत्मा है, हम मरते नहीं है, हम इन चीजों के द्वारा सुखी नहीं रह सकते। आज तक कोई व्यक्ति खाने से और पहनने से सुखी हो सका है, ऐसा तो कभी हुआ है। इसलिए इनके द्वारा हम सुखी नहीं हो सकते हैं। प्रहलाद महाराज जी कहते हैं भक्तों के चरणों में और सिक्त नहीं होने तक हम सुखी नहीं हो सकते। भक्तों के चरणों में सिक्त होने का तात्पर्य क्या है, उनके मुख से जो हरि कथाएं निकलती है उसके द्वारा कोई यदि व्यक्ति स्नान कर ले, उसको आचरण कर ले, सादगी में वो सुखी और शांति हो सकता है। ऐसा कौन प्राणी है, प्रहलाद महाराज जी पूछते हैं, ऐसा कौन सा प्राणी है जो दुख दूर करने के लिए चेष्टा नहीं करता। कोई भी दुख नहीं चाहता है कोई भी प्राणी, किंतु ऐसा कोई प्राणी है जिसको दुख नहीं आया हो। मनुष्य की बात छोड़ दो, राम आए राज्य छोड़ करके जाना पड़ा, पत्नी को भी रावण ने हरण कर, अंत में अपनी प्यारी पत्नी को भी बर्बाद देना पड़ा। प्रहलाद महाराज को इतने कष्ट हुए, अभी मीराबाई अभी कुछ दिन पहले कितना कष्ट हुआ, अभी जो जो भजन करते हैं उनको देखेंगे पूछेंगे, जो घर वाले और बाहर वाले समाज वाले उनको इतना कष्ट देने की चेष्टा करते हैं। तो कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जिनको बिना बुलाए अपने आप दुख नहीं आ जाता। ऐसे ही सुख किसी को होगा तो बिना बुलाए वो सुख भी आएगा। कोई वृद्धावस्था नहीं चाहता फिर भी वृद्धावस्था आती है। कोई को दुख आता क्यों, उसी तरह से सुख भी होगा तो अपने आप आएगा। इसलिए मन को उद्विग्न हो करके, मन को उद्वेग दे करके दुख को दूर करने की चेष्टा नहीं मत लगाए हो, बल्कि सुख के लिए भी चेष्टा ना करके दुख के लिए भी चेष्टा ना करके केवल भगवान का उनको स्मरण करना है। और जितने भी कर्तव्य जगत में है सबसे प्रधान और एकमात्र कर्तव्य है अपने को जान करके भगवान को जान करके उनका भजन करना। ये यदि हुआ तो वैष्णव के चरणों में अभिषिक्त होकर के हम इस चीज को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं होगा। इसीलिए प्रहलाद महाराज ने असुर बालकों को बच्चों को बुलाया, छोटे छोटे 5 वर्ष के 6 वर्ष के 10 वर्ष के बच्चों को बुलाया और उनको शिक्षा देने लगे। देखो भाई बचपन से ही भगवान का भजन करो, केवल मात्र बचपन से लड़के ही भजन करेंगे, लड़कियां भजन करेंगे कि नहीं। यदि
लड़के पढ़ते हैं तो लड़कियां भी पढ़ती हैं। आजकल तो सबको पढ़ने का है, सभी लोग पढ़ते हैं। यदि पुरुष नौकरी करता है तो स्त्री भी नौकरी करती है। जीवात्मा के दृष्टि से सभी एक, इसलिए प्रभु को जो परम पिता है उनका भजन करने में भी स्त्री पुरुष वृद्ध जितने भी है पशु पक्षी प्राणी कृत्रिम सबको ही प्रमाण कर भजन करने में अधिकार है। और यही परम कर्तव्य इसी को बोलने की वजह से आया, इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए। कोई कहता है मैं पढ़ा लिख लूं तो भजन करूं, प्रहलाद महाराज ने इसका उत्तर दिया कोई गारंटी है जैसे तो पार्टी करके 20 वर्ष के बाद में भजन करेगा ही, और जब इसी बीच में मृत्यु आदमी मर गया तो हम लोग दिल्ली जा रहे थे अभी कुछ दिन पहले, कार से जा रहे थे, देखा क्या दो ट्रक टूटे हुए और एक कार उनके भीतर में चली गई है, पीस गई है, उसमें अभी सप्त दिवाली वर और उसकी विवाहिता वर का भाई छोटा 5 वर्ष का, उसकी बहन छोटी सी और अब बालक सब बैठे हैं और एकदम पीस करके मैं जाने क्या हो गया उनका रक्त और मांस सब एक देखकर के दिल टहल। ऐसे एक घटना ही नहीं, आजकल हम घर से निकलते हैं ये भरोसा नहीं होता कि हम लौट करके ही घर में पहुंचेंगे। मैं तो यहां तक ये पार्क में टहलने जाता हूं तो रास्ता ये पार करके मैं सोचता हूं कि देखें लौटता हूं कि नहीं, किंतु हम लोग तैयार रहते हैं, सब समय तैयार रहते हैं, कमर में गमछा बांध करके तैयार रहते हैं, तैयार हैं सब समय। उसी तरह से प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं तू बड़ा हो जाएगा पढ़ लिख लेगा कभी तुम्हारी मृत्यु होगी, कोई गारंटी नहीं भाई, अभी तो खाने खेलने का समय है, खाने खेलने का तो समय है, किंतु देखो वो कहते हैं बच्चे मैं अभी पढ़ लिख इंजीनियर बन जाऊं डॉक्टर बन जाऊं विवाह शादी करूंगा और बच्चे हो जाएंगे और वो जब बड़े होंगे उनकी शादी वो भी करके हम तब जब वृद्धावस्था आएगी तो ये संसार से रिटायर होकर के तब भगवान का भजन। प्रहलाद महाराज ने आज तेरी कमर से ही हो जाएगी और तू सीधा बैठ भी नहीं सकेगा तो क्या भजन करेगा, इसलिए जब तक अभी शक्ति है तब तक भजन कर लो, चाहे लड़का हो लड़की हो बुद्धू हो भजन कर लो, नहीं तो पीछे पछताओगे। एक तो मृत्यु नजर कब हो जाए और मरने के पहले यदि पैरालिसिस हो जाए आधा अंग यदि शून्य हो जाए तो क्या होगा, यदि पागल हो गया तो आजकल कोई ऐसी बीमारी चली है नहीं नहीं सर वो आदमी एकदम मुख से बोलना बंद हो जाता है, आंख पैर शून्य हो जाते हैं, चल फिर नहीं सकता, बोल नहीं सकता, खा नहीं सकता, कोई दिनों के बाद मर जाता है। नए नए अनुसंधान चल रहे हैं औषधियों के और नए नए रोग प्रभु भी देखेंगे तुम क्या कर रहा है, तो इसलिए कब तू मर जाएगा कोई ठीक नहीं, इसलिए बचपन से भजन करो, यही तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। आजकल लोग साधारण कर्तव्य के लिए झूठ बोलने के लिए चोरी करने के लिए या और दूसरे कर्तव्य के लिए ये जो परम कर्तव्य है इसको भूल जाते हैं। मैंने किसी इंजीनियर को हमने यहीं के और कुछ और लोगों को हमने निमंत्रण दिखवाया हरिकथा में आया, नहीं हो तो सवेरे 1 घंटा 8 घंटा शाम को, नहीं तो दिन में 1 बार। कहते थे फुर्सत नहीं है, क्या कर रहे हैं, अरे कितने लोगों का कितने समाज का हमारे ऊपर में इधर में वहां जाना है, अभी अध्यक्ष हमको किसी ने बना दिया है, किसी ने सेक्रेटरी बना दिया है, उस काम में हमको जाना है, कहीं उधर जाना है, कहीं उधर जाना है, समय नहीं उनको मिलता। किंतु विचारो, सोचो किस काम में है जाओ, मरने के समय में वो समाज का वो सब काम किया हुआ आएगा न किस काम में आएगा। इसलिए एक आदमी प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, यदि एक आदमी को भी मैं भजन करा सकूं तो ये मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है, मैं खुद भजन कर सकूं करा। उन्होंने बच्चों से कहा, देखो वो लोग दयालु नहीं है जो खुद घर में रह करके भजन करते हैं, उनको मैं दयालु नहीं मानता, वो तो केवल अपना उपकार कर लेते हैं, बड़े भारी स्वार्थी हैं। जो लोग खुद भजन करते हैं, हजारों लोगों को भजन कराते हैं, इसके समान और कोई गुंडा व्यक्ति नहीं है, वो विश्व ब्रह्मांड में सबसे बड़े दयालु, सबसे बड़े दानी और सबसे कर्तव्य पराये हैं। और जो भगवान का भजन नहीं करते और संसार के इन कामों को ही महत्व दे करके इसमें अपने जीवन की सबकी कर्तव्यता मान लेते हैं, वो अंत में पछताते हैं। जब जम के तुम पकड़ेंगे धरेंगे ना, तो ये तुम्हें क्या किया ये शरीर ये करके। संसार में हम लोग मनुष्य शरीर या सबल पल को बुद्धि क्षमता दिया, तुमने क्या किया? तो हमने एक अस्पताल बनाया, उस अस्पताल में क्या हुआ? व्यभिचारी आदमी उसमें आई, अनिति से गर्भ धारण करने वाली, उनकी चिकित्सा हमने हजारों की करवाई। और क्या किया? उसमें बड़े बड़े दुष्ट बदमाश भी आए, उनकी भी चिकित्सा की। तो तुमको तो बहुत बड़ा पुण्य हुआ ना, उन नंबर में क्या हुआ? जिसको भी आप कर रहे हैं वो डॉक्टर को भी चोरी करके सब दवाएं बेच देते हैं, और जिनको अच्छी से चिकित्सा नहीं की जाती है उन गरीबों की नहीं थे। इसका पाप किस पर लगेगा? वो अस्पताल को बनाने वाले पर लगेगा ना कि किस पर लगेगा? जिन स्कूलों में भगवान के भजन की शिक्षा, आत्मा की शिक्षा नहीं दी जाती, ऐसे कोटि कोटि अस्पतालों को करने की इसकी क्या आवश्यकता है? यदि हाँ, यदि इसमें आत्मसुधार, यदि भगवान का भजन करने वाला एक व्यक्ति भी उन स्कूलों से निकला, हम समझेंगे कि वो स्कूल अस्पताल और ये सब चीजें कर्तव्य ठीक है। और ये तो भगवत भजन नहीं हुआ और सब कर्तव्य कर लिया तो कुछ भी नहीं हुआ। और यदि भगवत भजन एक व्यक्ति ने किया और कुछ भी नहीं किया था, उसका जीवन क्या आप में सार्थक? हमारे संस्कृति को लीजिए ऊपर से लेकर के आज तक सब यही, इसलिए भगवान का भजन करना ही हमारा मूल कर्तव्य है। उसको ठीक रख करके और सब करेंगे, वो भगवान का भजन करना का है एक, और बाकी सब काम है जीरो। एक को रख करके जीरो रखो तो दस गुना मान बढ़ता जाएगा, दस हजार, दस लाख, करोड़, अरब खरब बढ़ता जाए। एक को हटा करके लाख जीरो रखो, उसका कोई मान नहीं। क्या है? राम नाम को अंक है, मैंने एक है, राम नाम को अंक है, सबका धन है तू, अंक गए किछु हाथ नहीं, अंक रहे। तो सिद्धार्थ ने भी मीरा जी को यही कहा, जिनके प्रिय न राम गए देगी तभी तू बैरू समझत पपा मतलब। भागवत ने यही कहा गया, जिनको भगवान की कथा में रुचि नहीं है उनका जीवन व्यर्थ है। इस तरह से विचार करके आप लोग प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं का अनुसरण करने की चेष्टा करेंगे। समय नहीं है, इसलिए मैंने सबसे पहले बतलाया, उन्होंने बतलाया यदि भजन करना है तो गुरु सुश्रूषा, गुरु की सुश्रूषा करो। गुरु ही नहीं है, एक आदमी से मैंने देख वो भजन कर रहा, मैंने पूछा कि तुम्हारे गुरु का नाम क्या है? तो मैं गुरु हमारे है ही नहीं, तो कैसे भजन करता है? तो अपने आप भजन करते हैं, उसमें तनाव की क्या जरूरत है? कहिए ऐसे नहीं, अरे हारमोनियम का बाजा सीखते हो, कोई चीज पढ़ते हो तो गुरु की जरूरत होती है, शिक्षक की जरूरत होती है, और उस प्रभु का भजन करेंगे गुरु की कोई जरूरत नहीं। भाई ऐसा यदि गुरु नहीं होगा तो उसकी सुश्रूषा नहीं होगी, तो भजन की शिक्षा देने वाला कोई नहीं, भक्ति किसे करते हैं समझ नहीं सकेगा। इसलिए ऐसे एक्सपर्ट की जरूरत है जो कि हमको इस विषय में को ठीक ठीक ज्ञान दे जो भजन किसको कहते हैं, किसका भजन करना चाहिए, क्यों भजन करना चाहिए, किस तरीके से भजन करना चाहिए, ऐसे गुरु की शुश्रूषा करने से ही भजन होगा और भगवान में मति लगेगी और तब हम भगवान का भजन कर रहे हैं। यदि ऐसा संत पुरुष नहीं मिला, ऐसे गुरु जी नहीं मिले तो भगवत भजन नहीं। इसलिए प्रधान है इन शिक्षाओं का कार्य है, एक और बतला करके मैं अपना कर्तव्य समाप्त करूंगा। भगवान ने इनसे कहा प्रहलाद महाराज जी से, तुम बरमान हाथ जोड़ करके निर्भय रख पाओ, उसको कोई डर नहीं, प्रभु से डर नहीं। जो ही सब लोग डर गए, भगवान के समीप नहीं आए उनका क्रोध शांत करने के लिए, तो ब्रह्मा जी के उपदेश से वो बालक जल्दी से आकर का घट उनकी गोदी में चढ़ गया और आंखों से लटों से आग निकल गई, शरीर कांप रहा है, उनका क्रोध शांत नहीं। और प्रहलाद नारे झट उनके गोदी में एकदम बैठ गए, इनका क्रोध शांत हो गया और आंखों से आंसुओं की धारा प्रभु को निकले। प्रहलाद हमें क्षमा करो, हमारे आने में विलंब कुछ हो गया, बहुत विलंब हो, इसलिए हम अपने कर्तव्य से चूक हुए हैं, तुम हमें क्षमा करो। प्रहलाद को चाटने लगे, प्रहलाद महाराज निर्भीक होकर के गए, बैठा था क्रोध शांत करना था, क्रोध उनका शांत हो गया। प्रहलाद महाराज जी को उन्होंने कहा कि परमात्मा तुम कुछ हमारा दर्शन हो गए, ऐसे दर्द नहीं जाए मुझे प्रभु, मैं बनिया खोले एक पैसा दिया उसके बदले मसाला दे दिया, ये बनिया गिरी है भगवान का। मैंने भगवान से कहा कि प्रभु उनका चौपट दबाने लगे, चौपट भगवान की से रहा, प्रभु आपको एक पैसे का बताशा चढ़ाऊंगा यदि हमारे हमारे एक संतान पैदा हो, ये सब भजन नहीं है, ये बनियागिरी है। इसलिए प्रहलाद महाराज ने प्रभु मैं बनिया नहीं, आपका भजन इसलिए नहीं किया कि मैं बनियागिरी से आपसे कुछ लाभ कर सकूं, इसलिए आप हमको ये बल दीजिए हमारे बल मांगने की यदि कुछ अभिलाषा हो कामना हो ये सदा के लिए हमारा दूर हो जाए। प्रभु बड़े प्रसन्न हो, ऐसा तो मत हमने कभी जीवन में पाया है, इतने दिन हो गए ये कहिए तो भी कुछ मानो। तो दूसरा उन्होंने कहा हमारे पिताजी ने आपको बड़ा कष्ट दिया, इसलिए आप उन पर क्रोधित हैं, आप कृपा करके उनका उद्धार करें। कहा जाए जिसके वंश में उत्तम भक्त पैदा होता है उसके 21 पीढ़ी, मध्यम हो तो 14 पीढ़ी, और साधारण भक्त भी हो जो गुरु से दीक्षा लेकर के भगवान का भजन करने लग गया है या लग गई है उसके 7 पीढ़ी तक का बिना भजन किए हुए उनको उद्धार हो जाना चाहिए। पर वे मस्त ऐसा ही होगा, किंतु जो तुम्हारी ये कथा हमारी कथा जिसको सुनेगा पाएगा उनका सबका नहीं। अंत में वो बड़े प्रसन्न होकर के उनको भगवत भक्ति का वर दिया। भगवत भक्ति माने क्या, समय अवकाश पर भक्ति के संदर्भ हम अपनाएंगे। भक्ति बहुत तरह की होती है, शुद्धा भक्ति है उसके भगवान से कुछ न चाह करके कोई भी कामना वासना न हो केवल मात्र भगवान की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण का ही सेवा करना ही ये सबसे उत्तम आप है। प्रहलाद महाराज जी को बर देकर के और प्रभु अंतर ध्यान हो गए और प्रहलाद महाराज जी फिर अपने राज्य में सर्वत्र भक्ति का प्रचार करने लगे। इस प्रकार से प्रहलाद महाराज जी की शिक्षाओं का ये सार आपको सुनाए, आप लोग प्रहलाद महाराज जी के ही अनुसरण करके और भगवान का आज यही तक पंचा राधा रमन हरि गो विंद रमन हरि गो विंद श्रीमद् भागवत वेद रूपी कल्पलता का प्रपक्व फल है। समस्त शास्त्रों का यह सार गीता में बतलाया गया है। चतुर्विधा भजन्ते मां सुकृतो अर्जुनः, जज्ञातु अर्थार्थी च ज्ञानी च। बतलाया गया है गीता में चार प्रकार से लोग हमारा भजन करते हैं। कौन कौन लोग भजन करते हैं? आपकी अत्यंत दुखों से आत्म हो जाए। आप देखेंगे कि आप दुख कहीं दूर नहीं होने वाला है, असहाय हो जाते हैं, कोई भी छुटकारा ना उपाय नहीं है। तो लोग भगवान को स्मरण कर सकते हैं। यदि किसी कामना की कोई कामना हो, खर्च इत्यादि, और वो कामना किसी से नहीं पूरी हुई, तो प्रभु को भजन करते हैं, प्रभु का भजन करते हैं कि वो हमारी इस कामना को पूर्ण करते हैं, इसलिए वो भजन करते हैं। और मैं कहां से आया, मैं पहले कहां था और मैं फिर मरने के बाद में कहां चला जाऊंगा, ये विश्व कहां से आया, सुख शांति के लिए चेष्टा करते हैं किंतु वो आती नहीं। इसको कहते हैं जिज्ञासा। जिसको ऐसी जिज्ञासा हो और वह कहीं नहीं पूरी हुई तो उसके लिए भगवान का भजन करना। और ज्ञानी हो, यह संसार अनित्य है ये समझ गए हैं,
सुख शांति नहीं, तो फिर कैसे सुख शांति होगी? मैं कौन हूं सुख शांति जो चाहने वाला, ये कौन है? या शरीर, शरीर के बाद में जब शरीर से प्राण निकल जाता है तब तो आदमी कुछ चाहता नहीं है। वो जो चाहता है सुख शांति, वो कौन है? हम क्यों ये अज्ञान में पढ़ने समझ नहीं रहे इस सब बातों को? इन सब का ज्ञान तत्वों को जानने के लिए जो आतुर हो पड़ता है, तो वो देखता है कि कोई उपाय नहीं है, कहीं भी हम इस चीज को नहीं जान सकते, तो वो भगवान का शरणागत होकर उनका भजन करता है। ज्ञानियों में विवेक होता है, ये नश्वर चीजें हैं, मैं ये नहीं हूं, संसार का मैं कोई वस्तु नहीं हूं, इसलिए भगवान को कुछ प्यारे होते हैं। और ये लोग लाखों लाखों कोटि कोटि जन्मों के बाद में वासुदेव ही सर्वमुखी है, उन्हीं से ये विश्व है, उन्हीं का ये अंश जीव है, उन्हीं की ये माया है, उन्हीं का भजन करना चाहिए, ऐसा समझ करके भगवान के चरण में, इसलिए बोलो क्या। तो ये गीता में बतलाया गया जो चार प्रकार के लोग भगवान का भजन करते, श्रीमद्भागवत में भी ऐसा ही बतलाया गया। किंतु इसी श्लोक में एक शब्द है सुकृतिनो अर्जुन, मानने की विपत्ति हम सभी पर पड़ती है। भगवान को पुकारते हैं, भगवान का भजन करते हैं, नहीं करते, भगवान उस समय विपत्ति आने पर भी सुनेंगे नहीं। इसलिए ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको विपत्ति नहीं आती। कंस के ऊपर में विपत्ति आई, भगवान को उन्होंने प्रार्थना की, हिरण्यकश्यपु रावण के ऊपर में भी विपत्ति आई, मेघनाथ पर भी विपत्ति आई, उन लोगों ने भगवान को पुकारा कि आप हमारी रक्षा कर दें। अभी हमारी इंदिरा गांधी और उसके बेटे दोनों थे, मरते समय में भगवान से प्रार्थना की होगी, जिनकी पूर्व जन्म का संस्कार और सुकृति नहीं है, जिन्होंने साधु संघों की सेवा नहीं की, ऐसे व्यक्ति लोगों का स्मरण नहीं होता। चार प्रकार के लोग ये तो बतलाया, आत्म, जिज्ञासु और अभ्यर्थी या मौर्य, ये चार प्रकार के दोष हैं। मैं बहुत बड़ा भारी ज्ञानी हूँ, मैं तत्व ज्ञानी, ये भी दोष है। अर्थ की लालसा भी दोष है। आप होना दुख में पड़ जाना ये भी दोष है। जिज्ञासा तत्व ज्ञान नहीं है उसके लिए पूछ रहे। यदि इसी समय में पूर्व जन्म की कोई स्वीकृति हो, संस्कार हो, तो उस समय उसे याद आएगी और भगवान का शरणागत होगा, अन्यथा नहीं हो सकता। सिलीगुड़ी एक जगह है, उसमें हम लोग 15-20 आदमी की 40-50 आदमी सन्यासी ब्रह्मचारी हम लोग गए। वहां एक आदमी मर रहा था, अभी अब मरेगा तब मरेगा, कभी मैं जल गया, मर गया, मर गया, मर गया, मर गया, मर गया, बस ये जल रहा, वो जल रहा, मर गया, मर गया। घर वाले कह रहे हैं जैसे तू एक बार राम नाम कृष्ण नाम ले, और कोई चिंता वो पता नहीं। हम लोग गए देखा थे, कुछ शांत हुआ, हम लोगों ने भी चेष्टा की, अच्छा कृष्ण कृष्ण कहो, हरे कृष्ण कहो, ये प्रभु हमसे भी आता नहीं है, निकल ही नहीं रहा, ये प्रत्यक्ष दर्शक देखी हुई बात है, आज माई दूंगा। पूर्व जन्म में जिसका ही या इसी जन्म में उसका संस्कार नहीं होगा तो हजार का वो नहीं कहेगा, मुझसे इतना नहीं कहा जाता, तो तुम इतना नहीं कहा जा सकता है, कह सकता है और राम नाम नहीं कर सकता, नहीं निकलेगा। जन्म जन्म मुनि जतन कराए हूं, अंत राम कह नहीं निकलेगा राम कृष्ण, ये पक्की अजमाई हुई है। इसलिए बचपन से यदि हम करें संस्कार हो साधु संग होगा, ये भागवत उसी के कड़ी है, वो याद रहे भगवान का। ये संस्कार हम लोग बना रहे हैं, जैसे हम लोगों के गुरुओं ने हमारा संस्कार बनाया, आप लोगों के भी इस तरह से संस्कार। तो जैसे अभी आज का प्रसंग आएगा, गज और ग्राम में युद्ध हुआ, बड़ा भारी गजरा, त्रिकुट की पहाड़ियों में समुद्र के किनारे सोने जवाहरात पन्नों से उभरा पड़ा, बड़ा ही सुंदर दृश्य जंगल का। उसमें बेली चमेली और अनार इत्यादि ऐसा कोई फूल और फल नहीं है जो वहां पर न रहा, और वहीं पर समुद्र के किनारे समुद्र उसका चरण धो रहा है, और सुंदर सरोवर बगीची, देवताओं का वहीं पर या किसी ऋषि का वो कानून था, बगीचा बीच में बहुत गहरा सरोवर, और तरह तरह के उसमें पंखे, और उसमें कमल के फूलों से कल्लार के फूलों से वो भरा हुआ, केले के बगीचे चारों तरफ में लगे हुए, और एक मदमस्त हाथी, हाथियों का जुटपति, हजारों हाथियों को साथ में लेकर के, अपने बाल बच्चों को साथ लेकर के, और ग्रीष्म ऋतु गर्मी से तड़ पड़ा गया, पानी की खोज में छोर ऊपर उठा करके सूंघा, देखा जैसे किस तरफ से सुंदर हवा आ रही है, और उसने पानी के कहे उधर चलकर और उस सरोवर में गया, और वहां पर खूब पानी पिया, भरते सुगंधों से भरा, केसर से भरा पड़ा सुंदर निर्मल पानी, और फिर जब ठीक हो गया, साफ शांत हो गया, अपने सूंड से पानी लेकर के अपनी पत्नी के ऊपर में वो छिड़कने लगा, और अपने बच्चों को धुलाने लगा, कभी उनके मुख में पानी छोड़ दे, फिर एकदम मत्त हो गया। उसी समय किसी ग्राह ने उसका शरीर उसको पकड़ लिया था, कितने हजार वर्ष तक खींचातान होती रही, सब लोग चले, इसको कहते हैं आत्म, जब कोई नहीं रक्षा कर सका अपनी अधिकार करके चली गए, उसके बच्चे चले गए, कोई भी उसको नहीं बचा। उस समय में उस पूर्व जन्म का संस्कार, इसको कहते हैं सुकृति। क्या सुकृति थी अब ये बतलाएंगे, संक्षेप में हम बतला रहे हैं, लेकिन के लिए भी बात आगे बढ़ जाएंगे।
सुकृति थी, पूर्व जन्म में कुल देवता राजा कुहू नाम का कोई गंधर्व था, और कौन ऋषि
देवल
ऋषि वो गए तो उनका पैर पकड़ दिया पानी में, तो उन्होंने कहा जाओ मगर बन जा, किंतु वो बहुत व्यक्त करता भगवान की उपासना भी करता था, और साधु संत को कहा कुबेर का वो था, कुबेर के वो अंतर है, कुबेर बड़ी भगवत भक्त है और शंकर जी से कुछ संबंध था, इस संबंध के नाते उसको अंत में ये याद आई सुकृति थी ना, यदि सुकृति नहीं होती तो याद नहीं आती, इसलिए याद आई प्रभु आपके सिवा कोई हमारी रक्षा नहीं कर सकता, आप अशरण शरण सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाले आप मेरी रक्षा करें, और उनकी तरफ तरफ से इस तौसुति करने लगा, किसी देवता का नाम नहीं दिया, भगवान के किसी भी नाम को उसने दिया नहीं, देवताओं का नाम नहीं लिया इसलिए कोई भी देवता नहीं आए, किंतु गुरु का जो वर्णन किया वो तो एकमात्र प्रभु में ही वो है संभव, इसलिए प्रभु उसकी प्रार्थना सुन करके झट भाग, उनको देखा उसका चित्त निर्मल हो गया, उसने कहा कि ये शरीर की क्या जरूरत है, शरीर प्रारब्ध से मिला है, प्रारब्ध से रहेगा या जाएगा, इसके रहने और नहीं रहने से कोई भी बात नहीं, मैं प्रभु को इसके लिए प्रार्थना नहीं करता हूं कि हमारी रक्षा करें, बस आपके चरणों में हमारी अहत की भक्ति प्रदान करें, मैं यही चाहता हूं, बस प्रभु से रहा नहीं गया, झट वाए गरुड़ पर चढ़ करके, वेदों की मूर्ति गरुड़ है, आप दोनों को पकड़ करके मिनटों से तीन पद तक पकड़ा दिया, अब देखते देखते चक्र से उसका गला चीर दिया और उसको निकाल दिया, उसने पुष्प लिया था, पुष्प लेकर के कमल, और जैसे उनके चरणों में मैं अपने को आपके चरणों में समाप्त था, बस इसी से प्रभु आए और संकट से उबार दिया, और साथ ही साथ भगवान के छूने से वो जो ग्रह था वो हूंकार बना करके और प्रभु को प्रणाम करके स्तव स्तुति करके चला गया, और ये इंद्रदुम्न राजा पूर्व जन्म में क्षत्रिय राजा घर बात छोड़ करके और जंगल में चले गए, योग्यता थी नहीं अनाधिकारी थे, तो भी सबको छोड़ करके देह में आ सकती ही थी, इसको छोड़ छा करके सबको अपन में चले गए, और कुछ हरि भजन का वैसे जैसे ध्यान इत्यादि करने लगे, भगवान का नाम से थोड़ा सा संबंध हुआ, किंतु भजन क्या है, न गुरु न कोई कुआ, कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए भजन ठीक से नहीं कर सके, एक दिन अगस्त ऋषि आए उनका सम्मान नहीं किया, और उन्होंने देख करके क्रोधित होकर के कहा अरे तू राजा वहां जाकर के प्रजाओं का शासन करके उनका कल्याण करना चाहिए, उसमें वहीं रह करके भगवान का भजन करना चाहिए थे, बाल बच्चों का भी पालन करना चाहिए थे, तुम्हारी देहाशक्ति तो मिली नहीं और वहीं से यहाँ का कीर्तन कर रहा है कि क्या करता है, तू हाथी के समान स्थूल बुद्धि है, इसे तेरा हाथी हो गया, उन्होंने देखा कि भगवान का तो थोड़ा सा भजन किया था और अगस्त ऋषि का दर्शन का एक फल मिला, बस उनका संस्कार हो गया, कई प्रारब्ध में जो होना था सो हुआ, बस अपने को प्रारब्ध का वो मान करके सुखी रहे, और कुछ दिनों के बाद में हाथी हो सके, और वही भगवान का एक संस्कार का फल हुआ जो भगवान का स्मरण हुआ, इसलिए दूसरे जो विपत्तियां पड़ जाएंगे उनका नहीं होगा, इसलिए दिखलाते हैं ये संस्कार सब हरिगुरु वैष्णव के संग से होता, यहाँ जो कथा हो इसका संस्कार होगा ये अव्यक्त होगा, इसमें देरी लग जाएगी, कब यदि कोई सांसारिक वासनाएं उसके बीच में यदि आ जाएगी, मैं बात सुन रहा हूं इसलिए कि हमको लड़का हो, हमको संपत्ति मिल जाए, हमारी दुकान अच्छी तरह से चल जाए, हमारा लड़का पास हो जाए, मैं सुखी, ये यदि हो गया तो बीच में रोड़ा तक गया सब, और नहीं तो इसके सुनने से ही भगवान के अंदर में प्रीति उसकी होगी अवश्य, उसी प्रकार से हम चारों का विचार जब करते हैं, ध्रुव जी अर्थ की लालसा उन्होंने की और अर्थ के लिए, अर्थ माने राज्य के लिए, माता के बांगों से सिद्ध होकर के बागबानी से अपन में चले गए, हरि का भजन किया, किस लिए? राज्य के लिए, जो पिता का राज्य उसका मैं अधिकारी हूं। किंतु देखिए सौभाग्य था कि नारद जी मिल गए, यदि नारद जी नहीं मिलते तो उनको कोटि जन्मों में भी भगवान नहीं मिलते, उसे तपस्या से नहीं मिलते, इसलिए भगवान से मिलने के कारण भी गुरु है और नारद जी जैसे क्यों कुछ संस्कार था, उसकी मैया बड़ी भक्त थी, बचपन से उसने संस्कार दे रखी थी, इसलिए वो संस्कार को जैसे उन्होंने भगवान को दर्शन पाया भगवान का और दर्शन पाने के बाद में जब दर्शन किया उनकी वो जो अर्थ की लालसा दूर हो गई, मैंने कांच के लिए ये तपस्या की, आराधना की भगवान, और मुझे चिंतामणि भगवत का दर्शन मिल गया, उन्होंने 26,000 वर्ष का मुझे जो राज्य दे दिया, ये बेकार में इस झंझट में पड़ा रह गया कांच के टुकड़ों को बटोरने के लिए, हमारा ये 26,000 वर्ष बेकार का गया, प्रभु अब हमको ये नहीं चाहिए, किंतु तो प्रभु ने बढ़ते रखा था कि 26,000 वर्ष भोगना पड़ेगा, इस छोटी सी बात के लिए 26,000 वर्ष चला गया, किंतु नारद जी की कोई थोड़ी सी कृपा थी इसलिए भगवत दर्शन हो गए, जिसके बाद में उनको भक्ति मिली, किंतु वो भक्ति नहीं मिली कि वो वैकुंठ में चले जाए अथवा ब्रज में चले जाए, वो नहीं, ब्रज में जाने के लिए कुछ और चाहिए, उसके चाहिए वैसा गुरु, कैसा गुरु होना चाहिए, वो नारद जी के परामर्श से भी होगा किंतु इससे अधिक नहीं होगा, ये यदि गोपियां किसी प्रकार से अनुग्रह कर दें और गोपियों के अनुगत में रह करके भजन करेंगे, या ऐसा जो उन्होंने किया है ऐसे चैतन्य महाप्रभु के परकर गोस्वामी सनातन गोस्वामी है, इनका यदि कोई भजन करे और वैसा अनुसार तब ब्रज की भक्ति मिल सके, बिना ब्रज भाव के रखे वो ठीक नहीं, उसी प्रकार से सोनो आदि 7,000 ऋषि थे कलजी के भय से भगे और तपस्या की, इतनी तपस्या की और आराधना यज्ञ इत्यादि क्या स्वाहा स्वाहा, उनका ऊपर और भीतर दोनों काला हो गया, कुछ लाभ नहीं हुआ, केवल स्वाहा स्वाहा करने से कुछ नहीं होगा, यदि उसके बदले में यदि एक बार कृष्ण पाते ना तो काम बन जाता, किंतु कृष्ण कृष्ण कहा नहीं, वो स्वाहा स्वाहा इंद्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा कुबेराय स्वाहा, बस इसी देवताओं की बनती है स्वाहा स्वाहा करते हैं, किंतु भगवान के लिए कुछ नहीं किया, किंतु कुछ संस्कार था ऋषियों का, इसलिए उनको कुछ स्मरण हुआ, तो वहां पर श्रीमद भागवत का बैठा दिया यही, और भागवत के चलने लग गया, पुराण चलने लगे, वही सुन करके तब फिर उनका कल्याण हुआ, उनको जिज्ञासा थी हम भव सागर से कलयुग से कैसे तरेंगे, उनको वो सुत गोस्वामी मिल गए, भगवत भक्ति सच नाम संकीर्तन के द्वारा करे कृष्ण दे राजनस्ते हे गोमान, सब दोष कलिकाल में है किंतु इसमें महान से महान गुण है, भगवान का थोड़ा सा भी नाम कीर्तन कर दिया जाए, चलते फिरते अवध हो करके भी जैसे तैसे भगवान का गति हो जाए नाम, किंतु अपराध नहीं होना चाहिए वैष्णव के प्रति, शास्त्र के प्रति, भगवान के प्रति अवज्ञा इत्यादि नहीं, और क्या शंकर जी भी वही भगवान है, कृष्ण भी वही भगवान है, यदि किया तो भक्ति रुक जाएगी, भक्ति नहीं आएगी, सभी उनके दास दासी हैं, और जितने अवतार हैं सब कृष्ण के अंश हैं, कृष्ण भगवान सन, कृष्ण ही स्वयं भगवान है, किसी प्राणी मात्र को अनादर मत करो, अवज्ञा मत करो, किंतु भगवान के बराबर किसी को मत मानो, एक ही आसन पर ठाकुर जी राधा कृष्ण को भी बैठा दिया, बाल गोपाल को भी, रामचंद्र जी को भी, इधर में गणेश जी को भी, इसके बाद शंकर जी को भी, संतोषी मैया भी नई नई बड़ी सुंदर अभी युवा वाली आई है उनको भी बैठा दिया, और जवा फूल चढ़ा दिया साथ में लाल लाल, और साथ साथ में कनेर के फूल भी चढ़ा दिए, और साथ साथ में देनी चढ़ेगी भी, और फूल चना भी उनको दे दिया, तो उससे भगवान का तिरस्कार होता है ना, अपनी मैया के पास में किसी अत्यंत दुराचारी, किसी दुराचारी महिला को बैठा करके और दोनों को एक बराबर पूजा करो, तो क्या होगा, मैया बैठी भी हुआ। उसी तरह से कृष्ण सब आराध्य हैं, समस्त अवतारों के भी मूल हैं, समस्त देवताओं के भी आराध्य हैं, उनके बराबर न तो कोई है और न कोई होगा, इसलिए उनकी आराधना है। सब सुख गोस्वामी के वचनों से समकादि ऋषि इत्यादि सब चीज सोच करके भगवान का भजन करके ज्ञानियों में ये सनत सनातन इत्यादि बड़े ज्ञानी थे, तत्व ज्ञान बहुत था। ये जगत नई थी, ये भगवान है नई थी, ब्रह्म है नई थी, सब नष्ट चीजें हैं, शरीर ये भगवान है, ब्रह्म है नई थी, इतने से खोलते 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 खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं क्या है। हमारे जैसा ही एक परम बुद्धिमान एक गुरु का शिष्य था, जैसा मैं बुद्धिमान हूं, अपने को बहुत बुद्धिमान मानता था। गुरु जी उस चेले को हमारे जैसे चेले को लेकर के किसी जगह गए, वहां पर जो उनका शिष्य था वो बहुत बड़ा भाई कोई पढ़ता था, उस समय में देखा कि कोई नई सब्जी जो उठी हो जो 25-30 रुपए केजी का हो और नई बिल्कुल हो, वो सब्जी ले आकर के शिष्य को देकर के, जैसे शिष्य मैं जा रहा हूँ वहां पर इसको सुंदर रूप से सब्जी बनाना और गुरु जी को भोग लगाना, मेरे लिए भी थोड़ा सा रख देना प्रसाद, मैं शाम को लौटूंगा। उसने नई गोभी बंद गोभी उसने खरीदी और ले करके उनको शिष्य जी को दे दिया, उसको अच्छी तरह से रसोई बना करके। और जब वो चला गया तो साहब बड़ी अच्छी सब्जी ले आया है, बड़ी इतनी बड़ी है, तो सोचा कि ऊपर में पत्ता भीतर में कुछ होगा, तो ऊपर का पत्ता उठाया देखा, जब फिर एक पत्ता हटाया, नॉन की ये नहीं है, फिर उठाया फिर उसको फेंक दिया, ऐसे करते 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 सब जितनी बंद गोभी के जो पत्ते थे कोमल कोमल उनको भी फेंक दिया, अंत में जब देखा तो वही पत्ता सब बेकार फेंक दिया। शाम को वो आया, अरे गुरु जी को सब्जी बनाई, बनाता ना खाक बनाता, क्या बनाता, उसमें कुछ था ही नहीं, अरे आलू के छिलके हैं उसको छिल दो, पपीता आ जाएगा क्योंकि उसमें कुछ मिला ही, ऐसे ये ब्रह्म ज्ञानी थे, ये नहीं है ये नहीं है ये नहीं, किंतु है क्या तो देना था। ब्रह्मा जी को दया है, उन्होंने भगवान के चरणों में अर्पित समस्त जो तुलसी है उसका मकरंद उनके नाक में दिलवाया, अभी कहां से सुगंध आ रही है देखेगा, जब दर्शन को बैठक होगा भगवान का दर्शन करते ही कृतार्थ हो गए, फिर उनके पास में भक्ति कर इथम भूत गुणो हरि आत्मा निरंक है किम भक्ति इतम भूत गणी, भगवान के ऐसे ही गुण है कि ऐसे ऐसे जगत से जिनको ये सब दूर हो गए अनाशक्त हो गए हैं, ऐसे लोगों को भी जो ब्रह्म में एकदम लगे हुए हैं जिनकी भी मत्ति निर्विशेष ब्रह्म में, उनको भी खींच करके अपनी भक्ति में लगा देते हैं, अंत में ब्रह्मा जी की कृपा से उनका वो ज्ञान दूर हो करके निर्विशेष ज्ञान तब उनको भगवत भक्ति, ये चारों दुर्गुण हैं, किंतु भगवान के भक्तों की कृपा से भगवान की कृपा से जब ये दूर हो जाते हैं तो भगवान की भक्ति, इसको कहते हैं सुकृति नो अर्जुन, हे अर्जुन सुकृतिशाली मन से ही ये चार प्रकार के भगवान का भजन करते सभी नहीं करेंगे, इसी का श्रीमद् भागवत में प्रथम उसमें और दूसरी जगह में भी दिया गया, हम लोग भी ऐसे ही भक्ति करेंगे जिसे कि भगवान के चरणों में ऐसे ही उत्तम भक्ति हो। विशेष करके हम लोग मथुरा में बात करते हुए वृंदावन में बात करते हुए गोपियों ने जैसी आराधना की थी उसके अतिरिक्त दूसरी कोई आराधना नहीं करना चाहिए, उसी से ही प्रज्ञ हम लोगों का कल्याण होगा, हम लोग उसी प्रकार की हम लोग भक्ति पा करके कृष्ण और गो ये किशोरी जी की हम लोग सेवा को प्राप्त, इससे बढ़कर के जीवों के लिए कुछ भी प्राप्त कुछ भी पाने योग्य है नहीं, यही भागवत का संदेश है। अब आप लोग श्रीमद् भागवत से आगे का प्रसन्न बहुत प्रणानंदे, उन्होंने त्रिपाद भूमि से सबको पृथ्वी को और 14 भूमियों को माप लिया और इतना विकराल रूप धारण किया तो बड़ी क्रोधित हो गई, इसमें जिस पैर से मापा था जिस अंगों से इसमें से छल किया उसी पैर से मापे जैसा वो बच्चा था उसी 57 अंगों का था उसी से मापे। तो इसमें तो इतना बेवकूफ ये नहीं माना जैसे हम इतना रूप बढ़ा देंगे आप कब ये सब ले लेंगे। इसमें छल चाकरी थी और हमारे पिताजी को राज्य से श्री से सब भ्रष्ट कर दिया, सब कुछ ले लिया। इसलिए यदि मेरा बेटा कहो ठीक है किंतु मैं इसको बीज पान कराऊंगी कर्म में लगा करके और उसको माता दी। इसीलिए यही उतना होकर के अगले जन्म में आए और उसका बदला चुकाने आए और क्योंकि माता का भाव रखा था पहले इसलिए प्रभु ने उसका स्तन पान करके बीज पान करके दी उसको माता की धात्र उचित अतः माता जैसे कर। भगवान कितने बड़े दयालु बीज पान करने के लिए आई किंतु पुत्र का भाव होने के वजह से उन्होंने माता का भाव दे करके और उसको सद्गति कर। भगवान ऐसे दयालु ये इसमें विचारा उन्होंने बलि महाराज के ऊपर में कृपा की छल बल से उसका सब कुछ हर दिया देवताओं को दे दिया नहीं उनकी बड़ी भारतीय वृद्धाश्रम प्रख्यान में आप लोगों ने सुना वृद्धाश्रम कह रहा है अरे बड़ा इंद्र तू बड़ा हरी दुर्भागा तुम्हारा जन्म वृथा गया तूने भगवान से वामदेव तुम्हारे साथ में स्वस्थ में रहते हैं तुमने उसे उनके चरणों में भक्ति कभी नहीं मांगी तुमने उसे अनित्य ये त्रिलोकी का राज्य ही मांगा तो तुम्हारे जैसा और कोई बेवकूफ मूर्ख व्यक्ति जगत में उत्पन्न नहीं भगवान के चरणों में आकर कभी तुमने ऐसे उसी प्रकार से बलि महाराज जी त्रिभुवन के राज्य के मालिक थे प्रभु ने देखा कि प्रहलाद महाराज जी का नाती है प्रहलाद महाराज जी ने इस सबको तुच्छ मान करके हमारी कैसी अहस्ती भक्ति की और मैंने कहा है इसके वंश में जितने भी लोग आएंगे 21 पीढ़ी तक उनका उद्धार कर। तो यदि ये संसार में लपता पता रह गया और भजन नहीं किया तो मैं अपनी प्रतिज्ञा से छूट हो जाऊंगा इसे इस पर हमको कृपा करनी। इसलिए सबसे जरूर से उसका वो राज्य ले लिया जो आज न तो नष्ट होने वाला ही पहले कितनी बार नष्ट हो गया था इसलिए चलाकी से उसको ले सके और उसको परम भगवत भक्ति दी। उसके दरवाजे पर ये अंत में ये बतलाएंगे कैसे दरवान बन करके रहे उनको दर्शन देने के लिए उनके पति पूछ इस तरह से भगवान कैसे अनुग्रह करते हैं ये संसार के जिस पर प्रसन्न होते हैं हर से तब धन सनई उसका धन आसक्ति के वस्तुओं को हर करके उसको अपनी परम भक्ति दे देते हैं जिसे जन्म जन्मांतरों में उनको वो पा जाता है और उसका जीवन इसलिए ये उनको लेकर के हड़प करके उनको छल नहीं हुआ ये उनकी दरखास्त कृपा रही। अब आगे आप लोग सब
बात ये है अम्बरीश महाराज जी ने विचार किया मुझे क्या करना चाहिए ये ऋषि भी साधारण नहीं है एक तो ब्रह्मज्ञानी है ब्राह्मण है और इसके बाद में बहुत सिद्ध ऋषि इनका यदि मैंने इनको भोजन करने के कराने के लिए कहा है और उनके आने के पहले मैं यदि कुछ पालन कर लूं तो उनका निरादर होगा वो अभी संपात करेंगे और मुझे उसका फल भोगना पड़ेगा। दूसरी तरफ में मैं उस ब्राह्मण अतिथि का यदि सत्कार करता हूँ उसके लिए प्रतीक्षा करता हूँ और ये द्वादशी का व्रत का जो समय है पालन का वो यदि निकल गया तो हम भगवान की भक्ति से रहित हो जाए। एक तरफ में ब्राह्मण का सम्मान वो भी ऋषि महर्षि योगी और दूसरे तरफ में भक्ति हानि होने का प्रसंग है और भक्ति हानि मैं सहूं अथवा ब्राह्मण का तिरस्कार हो जाए मैं तो जान बुझ कर कर नहीं रहा हूँ तो उनकी अवज्ञा से मुझे कुछ कष्ट भोगना पड़ेगा और दोनों मुझे क्या करना चाहिए ब्राह्मण लोग भी इसका उत्तर नहीं दे सके। अंत में उन्होंने विचार किया वो भक्त है ना ऐसे ऐसे हजार बार ब्राह्मणों का अनादर होने से भी हमारा कुछ हानि नहीं होगी उससे होगा हम एक भ्रष्ट होकर के किसी दूसरे भूमि में जाएंगे दरिद्र हो सकते हैं श्री से भ्रष्ट हो जाए किंतु भक्ति से भ्रष्ट नहीं होंगे हम तो जैसा भी होगा सब क्लेश सहने के लिए तैयार है
किंतु भक्ति देवी को निरादर करने में हम समर्थ नहीं, इसलिए भक्ति का हमको आदर करना चाहिए। हमको भक्ति चाहिए, हम ये सब कुछ कर रहे हैं भक्ति के लिए, इसलिए भक्ति को हम नष्ट नहीं होने देंगे। इसलिए उन्होंने ऐसा विचार करके तब उन्होंने पानी से पारण इसीलिए किया, भक्ति का हम आदर करते, इसके बाद में और किसी का, वो सब सामाजिक लौकिक चीजें हैं और भक्ति है परमात्मा, इससे भगवान मिलेंगे और उससे एक ऋषि का आदर करने से नए पुण्य होगा, पुण्य से नए स्वर्ग मिलेगा, हमको स्वर्ग इत्यादि की जरूरत नहीं है, हमको भगवत भक्ति की जरूरत। ऐसा सोच कर उन्होंने संकल्प लेकर के और चरणामृत से इसके बाद में आना। अभी आती होगी, बस कोई एक बात में बस कहूंगा, चक्षु दर्शन छूट जाए और कोई पच जाए ऐसा कभी संभव है? ऐसा तो आज तक नहीं हुआ। चक्षु दर्शन ने पिछा किया कृत्या को उसी समय में मार डाला, उसे जला करके भस्म कर दिया और मैंने उनके पीछे में दौड़ा दुर्गाता जी के पीछे और एक वर्ष तक उनको कुछ नहीं कर सका, ये कैसे संभव? इसमें कुछ रहस्य है और रहस्य ये है, भगवान ने मारने के लिए ऐसे उनको नहीं छोड़ा, दुर्गाता जी परम भगवत शंकर जी के अवतार, किंतु वो छिप छिप करके भक्तों की महिमा को बढ़ाते हैं, अपने कर्तव्य पाते हैं तभी भगवान के भक्तों की महिमा बढ़ाते हैं। वो भक्तों की महिमा बढ़ाने के लिए एकादशी का महात्म बदलाने के लिए आए और उन्होंने इसीलिए वो एक बार सब भागते रहे, चक्र ने उनका कुछ नहीं है, पीछे से अम्बरीश महाराज ने सब कुछ करके उनको शांत कर दिया। कल भी बड़ी मनोहर लीलाएं होंगी, सांडिल्य ऋषि और दर्गाचार्य ने पहले से जान लिया कि कल कृष्णचंद्र जी अपने पूर्ण रूप में स्वयं भगवान के रूप में अवतरण, कल उनका आविर्भाव होगा। उन्होंने और किसी को नहीं बतलाया, किंतु ब्राह्मण लोग थे आसपास पर, उनको कुछ हिंट से इंगित से बतलाया दिया जे कल उनका आविर्भाव होने वाला है। कल प्रसंग में कृष्णचंद्र जी का 9 बजे से 10 बजे के अंदर में हम जन्म लीला का उनका वर्णन करें। उस प्रसंग में नंद जसोदा जी की इच्छा है कि कल हमारे लाला को जो देखने के लिए आए वो नंद भवन नहीं प्रसाद पाए, जो हरी कथा सुन रहे हैं, जो सुनने के लिए आए सब लोगों के लिए गांधी की विशेष इच्छा है, उनके लाला को आप लोग सभी दर्शन करने के लिए पधारे, 10 बजे की कथा समाप्त होने पर आप लोग सब यहाँ पर आते दर्शन करेंगे। बधाई के कुछ कीर्तन हुए, महिलाएं भी 2-4 चुन करके ले आएंगे और ये लोग भी भक्त लोग कीर्तन करने वाले, यशोदा के लाला की बधाई के फिर जो दुर्गा कीर्तन नंद बाबा अपना लेकर के कुछ आनंद के मारे जो कुछ उनके घर में आया वो सब कुछ जो आया था अपने घर का भी सब कुछ लुटा दिया, कुछ उनके घर में एकदम धन पूरी है, कृष्ण के लिए सेवा करने से कुछ कमी नहीं होगी। इसके बाद में नंद बाबा जी और यशोदा मैया जी कुछ प्रसाद की थोड़ी सी व्यवस्था करेंगे, आप लोग ऐसा मत समझेंगे कि हम लोग हरी कथा सुन करके तब चले, प्रसाद का जरूर आदर करें। अभी सुना ना, दुर्गाता जी ने माला दिया भगवान की, इंद्र को दिया, उन्होंने हाथी के सिर पर रख दिया और हाथी ने कुछ दिया दूसरी से भरते हैं, इसलिए प्रसाद सेवन में नंद बाबा के घर में नंद भाव में प्रकाश पाने में हम लोगों का परम सौभाग्य होगा। इसलिए आप लोग थोड़ा विलंब करके कई तरह 11 बजे तक उनका भोग रात होगा, थोड़ा सा प्रसाद पा करके तब यही विशेष नंद बाबा और ये सब लोग तो हमारे बंसल जी है ही है, बंसल जी का सब परिवार ये है ही है, दादा ने कल के लिए विषय स्वर्गीय सतीश चंद्र गुप्ता सोने वाले उनका परिवार विशेष से नंद बाबा का और यशोदा जी का उनकी सास का नाम भी यशोदा था इसलिए यशोदा के रूप में वो लोग कुछ आयोजन कर रही हैं नंद अपने लाला के उत्सव के लिए उनकी पत्नी का नाम विजय कुमारी गुप्ता भी है और सब यहाँ पर आते हैं उन सब लोगों के तरफ से कल ये शुक्र जैसा होगा महोत्सव होगा आप लोग उसमें प्रसाद और इसकी व्यवस्था आप ही लोग करेंगे लोगों को बैठाने के लिए बैठाने के लिए प्रदर्शन करने के लिए ये सभी व्यवस्था आप लोगों के हाथ में हमारे पंकज जी हैं हमारे राम प्रसाद जी पूछी वाले हैं और हमारे कौन है सुंदरी लाल सुंदरी लाल